अभी स्वागत गीत पेश करेंगे हमारे हल्दर भाई और निरंजन भाई। गीत के बोल है, खुशियों का नहीं है ठिकाना दिल से शुक्राना, खुशियों का नहीं है ठिकाना दिल से शुक्राना।
ओम शांति। खुशी में कौन कौन हाथ उठाए? आप लोग खुश नहीं है? बेहद खुशी में कौन कौन है? बेहद बाबा के घर में है तो बेहद खुशी होनी चाहिए। आज हम लोग नहीं गा रहे हैं, ये आज आप लोग गा रहे हैं गीत। किसको सुना रहे हैं? बाबा को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि बाबा ने बुलाया अपने घर। अपने घर किसको बुलाया? अपने को अपनों से मिलाने। इसीलिए आप सभी गा रहे हैं, निमित्त बन के हम दोनों भाई गाएंगे। ठीक है, ओम शांति।
खुशियों का नहीं है ठिकाना दिल से शुक्राना, वो बाबा शुक्राना। मधुबन के भट्टी में बुलाना दिल से शुक्राना, वो बाबा शुक्राना। अपने को अपनों से मिलाना दिल से शुक्राना, हो बाबा शुक्राना। मधुबन के भट्टी में बुलाना दिल से शुक्राना, हो बाबा शुक्राना। मधुबन भट्टी का सुनहरा मौका है मिला,
मधुबन भट्टी का सुनहरा ये मौका मिला।
प्रभु रंग में रंगने का ये मंगल मिलन मिला,
प्रभु रंग में रंगने का ये मंगल मिलन मिला।
ये दिल तो हो गया दीवाना दिल से शुक्राना, मधुबन के भट्टी में बुलाना दिल से शुक्राना।
अपने बेहद घर में आए,
पलसड़ बहादुरगढ़ अपने बेहद घर में आए।
मधुबन बाबा भी मंद मंद मुस्कुराए,
मधुबन बाबा भी मंद मंद मुस्कुराए। अपने प्यारे बच्चों को बुलाना दिल से शुक्राना, मधुबन के भट्टी में बुलाना दिल से शुक्राना।
मधुबन हर शय में बाबा नजर आते हैं,
मधुबन है दर्शन में बाबा नजर आते हैं,
साकार संग का एहसास वो कराते हैं,
साकार संग का एहसास वो कराते हैं। संगम युग पल पल सुहाना, दिल से शुक्राना, मधुबन के भट्टी में बुलाना, दिल से शुक्राना। खुशियों का नहीं है ठिकाना, दिल से शुक्राना, ओ बाबा शुक्राना, दिल से शुक्राना।
ऑप्शन
वालों का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
अभी आप फोन करके पूछ लो, अभी आपके सामने अभी शशि बहन आएंगे, शशि बहन भी आप सबसे मिलेंगे और आगे और फिर आप सबको टोली भी खिलाएंगी, वेलकम की टोली खिलाएंगी, ठीक है।
हर दिन का आपका एक सम्मान भी होगा, आज पहला दिन है तपस्या के लिए आए हैं, तो मैं महातपस्वी मूरत आत्मा हूँ। तो हमारे बीच में हमारे आदरणीय शशि दीदी जी पधारे हैं, हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी बाल्यकाल से ही इस ज्ञान मार्ग पर हैं और आरंभ से ही आपने मम्मा बाबा की भी पालना ली हुई है और करीब 72 से ही आप हेडक्वार्टर में रहने लगे हैं और दादियों का कार्यभार भी अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत लाइट और माइट से भरपूर और सबके साथ मिलनसार। स्पोर्ट्स विंग के भी आप चेयरपर्सन हैं, बहुत ही प्रतिभा के धनी, कंठ से गीत गाते हैं, लिखते भी हैं। तो ऐसे दीदी से अभी हम सुनेंगे भट्टी के लिए शुभकामनाएं, शुभ प्रेरणाएं और उसके बाद मधुबन में आने के बाद 3 बातों पर अधिकार होता है ना, टोली, बोली और दृष्टि, तो टोली भी आपको देंगे।
ओम शांति। आज प्रातः मुरली सुन रहे थे, प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को, आप सब बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं। बाबा ने कहा मैं बच्चों को बधाई देता हूँ, किस बात की बधाई देते हैं? बाबा ने कहा कि मैं सतयुग में नहीं आता हूँ, तुम बच्चे जाते हो, ऊंच पद पाते हो, देवता बनते हो, फिर यहाँ पर बाप को पहचान लिया, रावण की जंजीरों से छूट जाते हो। तो बाबा ने तो भट्टी वालों के लिए पहले से ही आज आप सबका मुरली में ही स्वागत भी कर लिया और स्वागत के साथ साथ आप सबको बहुत बहुत मुबारक भी दे दी। तो प्यारे बाबा तो बच्चों का सदा ही स्वागत करते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे लाडले बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं, कलप के बाद मिले हैं और 5000 वर्ष के बाद केवल संगम युग पर ही मिलते हैं, युगे युगे नहीं मिलते हैं, बाबा संगम पर ही आकर के बच्चों से मिलते हैं। तो कितना बड़ा भाग्य मिलता है आप सबको, और मधुबन में आना ये भी एक बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। शुरू में साकार बाबा के टाइम पर तो यहाँ ही मधुबन में रहते थे, थोड़े बच्चे थे उस समय, तो वो पोजीशन थी। साकार बाबा के टाइम पर ये पांडवन बहुत छोटा था, 20-25 भी आ जाए तो कहते बड़ा ग्रुप आ गया, 50 आ जाए तो कहेंगे बहुत बड़ा ग्रुप आ गया, बहुत बड़ा ग्रुप आ गया। बाबा के टाइम पर जगह ही नहीं थी, कहाँ पट में सुलाते, कहाँ पर सुलाते, कहाँ कहाँ। बाबा खुद ही खड़े होकर के बच्चों के रहने के प्रबंध के लिए बहुत ध्यान देते थे। उसके बाद फिर बाबा जैसे अव्यक्त हुए, उसके बाद तो बाबा के बच्चों की संख्या बढ़ने ही लगी। बाबा के बच्चों की संख्या बढ़ने ही लगी और उस संख्या के बढ़ते ही बाबा का घर भी बढ़ता गया, स्थान भी बढ़ता गया। फिर स्थान बढ़ते बढ़ते बाबा के बच्चे भी बढ़ते गए। तो बाबा ने कहा था ना कि आगे चल करके समय आएगा, बहुत बच्चे आएंगे, उनके लिए यहाँ रहने के लिए मकान आदि भी बनाना ही पड़ेगा। फिर बाबा ने बताया इस तरह से, पहले पांडव भवन था, पांडव भवन में बाबा के टाइम पर केवल हिस्ट्री हॉल था। फिर बाबा के बच्चे बढ़ने लगे तो आपको मालूम हो कि जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, जब अव्यक्त बाप दादा आते थे, साकार बाबा अव्यक्त हुए, तो पहले अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आते थे, फिर अव्यक्त बाप दादा हिस्ट्री हॉल में आने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत बच्चे बढ़ गए। तो एक बार ऐसा हुआ कि इतने भाई बहने आ गए कि बाबा आंगन में आए, अव्यक्त बाप दादा के लिए आंगन में स्टेज बनाई गई और चारों ही तरफ बाबा के बच्चे बैठे हैं, कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है। तो उसके बाद ये प्लान किया गया कि बाबा कहते ना बच्चे बढ़ते ही जाएंगे, तो फिर प्लान किया गया क्या किया जाए। थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शन भी हुई, बच्चों के रहने के लिए भी बना और फिर ये मेडिटेशन हॉल बनाया गया। तो बाबा के टाइम पर ये मेडिटेशन हॉल नहीं था, ये एक पहाड़ी थी और बाबा यहाँ पर बैठ करके तपस्या करते थे। और बाबा बच्चों को, खास करके दादियाँ और सीनियर जो भाई होते थे, उनके साथ बैठ करके यहाँ पर तपस्या होती थी। और कभी कभी बाबा यहाँ पहाड़ी पर खड़े हैं और नीचे दादियाँ खड़ी हैं तो गीत बजता था कि धरती को आकाश पुकारे। उस समय सारे के सारे दौड़ करके यहाँ आ जाते थे और आकर के बाबा के साथ बहुत मीठी मीठी ज्ञान की रूढ़वान करते थे, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करते थे। तो ये जो स्थान है मेडिटेशन हॉल, ये मेडिटेशन हॉल कोई सिंपल नहीं है, ये एक बहुत विशेष स्थान है, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर साकार बाबा ने खुद बैठ करके तपस्या की है। आपने देखा होगा बाबा का एक फोटो पहाड़ी पर, ऐसे बाबा लेटे हुए, देखा ना, वो किस पहाड़ी का, वो इसी पहाड़ी का है। तो बाबा की ये तपस्वी भूमि, तपस्वी हॉल है, जिसको हम कहें कि बाबा की ही पहाड़ी है, जहाँ पर बैठ करके आपको तपस्या करने का मौका मिल रहा है। और इस भट्टी में तो कमाल की बात है, दो ग्रुप है, एक है बहादुरगढ़ और दूसरा है बलसार। तो मैं सोच रही थी, बहादुरगढ़ बाबा के बहादुर बच्चे हैं ना, बाबा कहते मेरे बहादुर बच्चे हैं और बहादुरों के साथ माया भी बहादुर रूप में आएगी। आए माया कि नहीं यहाँ पर हैं? क्यों नहीं आएगी? अभी तो देखा ना, भट्टी करने आए तो जरूर आएगी, भट्टी में बैठेगी ना, माया कैसे आएगी, आकर के झुटका दिला देगी, है कभी कोई सो जाएंगे, फिर देखेंगे चलो कोई आया इधर भी देख ले। अच्छा, फिर भट्टी में बाबा से बहुत उलहने देंगे, बाबा हम ज्ञान में पीछे आए, हमने तो दादियों को नहीं देखा है, हमने ये नहीं देखा है, हमने ये अनुभव नहीं किया है। ये बाबा से जो इस प्रकार के उल्टी रूहान करते ना उलहने वाले, उसमें माया खुश होती है, कहती ठीक है अभी मौका मिल रहा है, मैं इनको अच्छी तरह से अपनी तरफ खींचूं। तो बाबा के घर में आना, खुशी में रहना, बाबा को थैंक्स देना, बाबा के साथ मिलन मनाना और बाबा के साथ बैठ करके, यहाँ भट्टी में बैठ करके तपस्या करना है, इतना बड़ा भाग्य बाबा ने दिया है, ऐसा भागे तो और किसी को कहीं पर मिल ना सके। तो इसलिए क्या करना, अपने भाग्य के गुणगान करने, नहीं तो फिर भट्टी में आते ना, कई कई तो ऐसे भी आ जाएंगे कहेंगे पता नहीं हमारा तो योग लगता ही नहीं है, योग कैसे लगना है, हम वहाँ योग में बैठते हैं हमारा तो योग लगता ही नहीं है। अरे योग नहीं लगता तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बाबा कहते हो तो बाबा को प्यार से बाबा कहते हो ना, बाबा को कहते बाबा मेरा योग नहीं लगता है। इस पर आपको एक कहानी सुना देती हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक विदेशी था, कहता मेरा ना मैं बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, मैं बाबा से प्रश्न पूछूंगा मैं बाबा को याद कैसे करूँ। तो वो बाबा से मिलने के लिए यहाँ पर आए, उन दिनों बाबा ओम शांति भवन में आते थे, बड़े बड़े ग्रुप्स आते थे, ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात होती थी। ग्रुप बैठा हुआ था तो बाबा उसको दृष्टि देते कहा कि सहज योगी बच्चा है, सारे हंसने लगे। तो बाबा ने कहा क्या हुआ, कहा कि ये तो प्रश्न पूछने वाला है, कहता बाबा मेरा योग नहीं लगता। तो बाबा ने कहा क्या करता, यही तो कहता ना, बाबा मैं आपको याद नहीं कर सकता, बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मेरा योग नहीं लगता। तो क्या बोलता है, बाबा बाबा ये तो कर और क्या करा, लेकिन कर क्या रहा है, उल्टा, उल्टी चक्की चलाओ तो क्या होगा, उल्टी रिवर्स गाड़ी चलाएंगे तो क्या करेंगे, कोई उल्टा चलता है ना, कहते इसको क्या हुआ है, ये चलना है सीधा, चल रहा पीछे। अच्छा रिवर्स गाड़ी चलाएंगे, कहाँ पर जरूरत है वहाँ रिवर्स करना है ना, ऐसा नहीं कि गाड़ी रिवर्स करते जाएंगे तो कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि हम बच्चों को ये खुशी हो कि इस संगम युग के अंदर बाबा ने हमको सिलेक्ट किया है। सारी दुनिया से कहाँ आपको सिलेक्ट किया, कहाँ दिल्ली, दिल्ली के पास के सारे NCR है वहाँ पर थोड़े से बच्चे, और कहाँ बहादुरगढ़ के बच्चों को चुन लिया है, और कहाँ इनको पकड़ करके बाबा ने यहाँ बुला लिया, कहाँ वलसार में हमारी दीदियाँ कितने प्यार से सेवा करती है, तो वो भी तो बाबा ने ही चुना है ना। तो जब वलसार की बात आ रही थी मैं भी खुश हो रही थी, मैंने कहा वलसार है ये क्या है, बल के सार में रहने वाले, सदा बाबा जो कहते शक्तिशाली बन के रहो, जो शक्ति बाबा देते हैं ज्ञान के द्वारा योग के द्वारा उसके स्वरूप में बनना, सार मीन्स उसका स्वरूप बन जाना। तो हम शक्ति स्वरूप है, हम शक्ति स्वरूप होकर के हर एक चीज का अनुभव करें, क्योंकि ये भट्टी में जो आते हैं वो केवल एक है सुनना, आपको इतना ज्ञान सुनाया जाएगा, इतना ज्ञान मिलेगा, कभी कभी आपकी झोली इतनी भर जाएगी फिर कहीं छेद ना हो जाए, ऐसा भी ना हो, तो उसका स्वरूप बनना है। बाबा कहते उसका बीज बनते जाओ, जैसे जैसे बीज बनते जाएंगे उसका वैसा ही अनुभव करते जाएंगे। साकार में बाबा ने क्या करके दिखाया, बाबा के सामने बच्चे आते थे ना, बाबा कहते आओ बच्चे, बस बाबा को देखा और वो आत्म अनुभूति हो गए। बाबा के पास आते थे बहुत सी बातें लेकर के आते थे, आज हमको बाबा से पूछना है, आज हमको बाबा से पूछना है, जैसे वो बाबा के पास आते बाबा को देखते तो बाबा कहते बच्चे कुछ कहना है, नहीं बाबा, फिर बाबा कहते बच्चे बोलो कुछ कहना है, नहीं बाबा हमारा सब कुछ हो गया। अरे क्या हो गया, सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया, उनको साक्षात्कार भी हो गया, आत्मा की अनुभूति भी हो गई, उस स्वरूप में भी टिक गए, भविष्य का साक्षात्कार भी हो जाता था, बाबा को देखते ही सब कुछ अनुभव हो जाते थे। तो बाबा बोलते कम थे लेकिन उसके स्वरूप थे। अंत में भी बाबा का क्या हुआ, जब बाबा अव्यक्त होने वाले थे तो अपनी दादियां सब बताती हैं कि बाबा के पास जब मिलने आते थे तो बाबा को विस्तार में समाचार सुनाते थे ना, कभी कभी बाबा सुनते हुए न्यारे और प्यारे, बाबा कहते थे दो अक्षर में सुनाओ क्या किया और क्या करना है, दो अक्षर में सुनाओ। तो बाबा भी हमको क्या कहते, इस भट्टी में बीज स्वरूप बनना है और उसके स्वरूप में बैठ करके और सब प्रकार के अनुभव करने हैं। तो इसलिए आप सबका इस भट्टी के अंदर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत प्यार से बाबा आप बच्चों की पालना करते हैं, और यहाँ तो आप सबको रहने के लिए बाबा ने बहुत अच्छा स्थान दिया है। अभी आप देखो वैष्णो देवी जाते हैं वहां पर बारिश पड़ गई, बर्फ पड़ गई, तो कहां जाके बैठे रहते हैं? सड़कों पर बैठे। तो बाबा क्या कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे हैं, और बाबा के टाइम पर तो सब पट पे सोते थे, लेकिन वो समय नहीं है कि जो हम पट पर सोएं। तो अभी बाबा क्या, उस समय तो बाबा कहते थे पट राजा पट रानी बन गए, और अभी क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे, खट राजा और खट रानी क्या कहेंगे बोलो, हम बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे, खट राजा थोड़ी बनना है आपको, तो पैलेस में सतयुग के अंदर जो इतना बड़ा पैलेस मिलेगा, कितना बड़ा आपको महल मिलेगा, माताएं बताओ, बहादुरगढ़ जितना ठीक है ना, हैं? उससे भी छोटा चाहिए, उससे बड़ा बस दिल्ली जितना, और उससे बड़ा फिर भी बताओ कितना चाहिए, हैं? आपको कितना चाहिए, सूरत जितना या वलसाड़ जितना या दमन जितना है जहां पर सब हैं कितना चाहिए? नहीं, देखो वहां तो सतयुग के अंदर चाहिए कितना सवाल ही नहीं, सारा ही आपका है, जहां चाहो जिधर घूमो जहां पर बैठो कोई रोक टोक नहीं है। घर में एक छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसका भी पुष्पक विमान, वो बैठेगा बटन दबाएगा उड़ जाएगा, जहां चाहिए उड़ना उड़ करके घूम फिर करके वापिस आ जाएगा। वहां पर आपको चिंता भी नहीं रहेगी कि घर की सफाई करनी है, आज खाना बनाना है, चाहे 56 प्रकार का भोजन बनता है, बन जाता है, कैसे बनता है, इतने नेचुरल फ्रूट हैं, इतनी वैरायटी है, इतना सब कुछ है, जितना खाओ जितना पहनो जितना मौज करना करो। लेकिन संगम युग के अंदर बाबा जो मौज कराते हैं, इन मौज जैसा सारे कल्प के अंदर कहीं भी मौज नहीं है। तो बाबा कहते मौजों में रहो, मौज करते रहो, बाबा की गोदी में रहो। बाबा की देखते हमने बाबा के सामने इतने वैरायटी बच्चे हैं, बाबा ने ये कभी नहीं कहा ये मेरा बच्चा इतना होशियार नहीं है, मेरा बच्चा ये साधारण है, मेरा बच्चा ज्ञान को ठीक नहीं समझता है, कितना सुनाता हूँ ये सुनता ही नहीं है समझता ही नहीं है। साकार में बाबा बच्चों को इतना प्यार करते थे, और बाबा कहते थे आज नहीं तो कल तो ये संपन्न बन ही जाएगा। और अभी भी क्या है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से रूहान करते, ब्रह्मा बाबा को उलहना देते, कहते बताओ तुम्हारे बच्चे कब तैयार होंगे, तो ब्रह्मा बाबा आप सबकी फेवर करते हैं, कहते तैयार हो रहे हैं ना, हो जाएंगे, तो बाबा कहते कब, बाबा कहते नहीं नहीं हुए पड़े हो तैयार हो रहे हैं। अब बाबा कहते देखो कितनी फेवर करते हैं, बाबा कभी नहीं कहते हैं मेरा ये बच्चा पुरुषार्थ नहीं करता है, तो बाबा तो जानी जाननहार है। बाबा कहते हैं कि नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है, सतयुग के अंदर भी इनका स्टेटस जो है वो भी नंबर वार है, तो अपने स्टेटस के अनुसार अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी स्टेज के अनुसार वह पुरुषार्थ कर ही रहे हैं और संपन्न बन रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चे को क्या करना है, सदा बाबा की महिमा तो क्या, अपने ब्राह्मण परिवार की भी बहुत महिमा कर। ऐसा परिवार कहीं मिलेगा कहाँ के कहाँ, कोई कहाँ, और इतना खुश होते एक दूसरे को देख करके, तो ब्राह्मण परिवार भी तो कहीं नहीं मिलेगा ना। तो ऐसा ब्राह्मण परिवार जो हमको मिलता है, तो ब्राह्मण परिवार की भी हमें खुशी होनी चाहिए। और फिर इस भट्टी के अंदर फिर आप कहाँ उड़ेंगे, भट्टी के अंदर उड़ेंगे बैठेंगे या तपस्या करेंगे, अब बताओ है, उड़ना है बैठना है या तपस्या करना है, उड़ना है, किस कौन से रॉकेट में बैठेंगे उड़ेंगे हैं, रॉकेट में जाए, आजकल तो रॉकेट में जाते हैं, अभी देखो कौन से रॉकेट में जाना है। बाबा ने कहा स्व स्थिति के रॉकेट में, जैसे वो रॉकेट होता है ना बड़ा, बहुत बड़ा होता है दूर से, लेकिन उसके अंदर जो वो डालते फ्यूल डालते वो बहुत सूक्ष्म होता है, और जो रॉकेट में जाता है उसका भोजन जो होता है वो इतना लाइट भोजन होता है, ये सब यहाँ जो खाना खाते वो नहीं होता, और उसकी ड्रेस देखने में बहुत बड़ी बड़ी होगी लेकिन बहुत लाइट होती है। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि अगर आपको उड़ना है तो क्या करना, कौन सी ड्रेस होगी, फरिश्ता के, फरिश्ता ड्रेस में भी अंतर है। फरिश्ता ड्रेस एक होती है चमकीली, एक होती जिसके ऊपर बहुत सुंदर स्टार्स लगे, एक होती जिसके ऊपर गोल्डन स्टार्स होते हैं। वो स्टार्स की लाइट ऑटोमेटिकली आती है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को फरिश्ता बनना है लेकिन गोल्डन स्टार्स वाली ड्रेस डालें। गोल्डन स्टार्स अर्थात वरदान। बाबा हम बच्चों को आते ही वरदान देते हैं। हम बाबा के पास आए, बाबा ने पहले वरदान दे दिया, बाबा ने टाइटल दे दिया, तो जो इतने वरदान मिले ये गोल्डन स्टार्स हैं। तो बाबा कहते हैं वो गोल्डन स्टार्स वाली ड्रेस पहन करके स्व स्थिति के रॉकेट में बैठ जाओ तो उड़ो और शुभ संकल्पों के, शुभ वाइब्रेशन के वाइब्रेशन फैलाते जाओ तो फिर तो आप उड़ सकते हैं ना। फिर दूसरा क्या करेंगे, भट्टी में, यहाँ भट्टी में बैठते हुए बीज रूप की स्थिति में आपको बैठना है। और बीज रूप की स्थिति में जिसमें कोई भी इधर उधर का संकल्प नहीं, बहुत ही पावरफुल संकल्प, और उसमें और कुछ भी नहीं, और भट्टी के अंदर सब कुछ क्या करेंगे स्वाहा, इधर की कोई भी बात हो कुछ हो, फिर कई आपको मिलेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन भट्टी में इधर उधर की बातों में अपना ध्यान नहीं देना है। क्योंकि गुजरात के आते हैं ना यहाँ पर, बहुत टाइम से यहाँ सेवा के लिए आते रहे, गुजरात को तो बाबा बहुत प्यार करते हैं, जब भी दादी भी बहुत प्यार करती थी, और जब भी सेवा की जरूरत होती थी दादी कहती ठीक है सरला को बोलती है वो भेज देगी, और सरला दीदी क्या करती थी पूरे गुजरात से सभी भाई बहनों को इकट्ठा करके जब भी जरूरत हो तो यहाँ सेवा के लिए भेज देती थी। तो जब यहाँ सेवा के लिए आते तो बहुत भाई बहने आपकी सेवा से खुश होते, सब आपको जानते हैं, फिर कहेंगे अच्छा वहाँ क्या चल रहा है, कौन सी सेवा चल रही, तो समाचार पूछेंगे। तो आपको समाचार नहीं, बाबा के जो ज्ञान का सार है उसमें समा के रहना, योग के स्वरूप में रहना है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और आप सभी तो बाबा के लाडले बच्चे हो, फिर अभी आप सबका स्वागत करते हुए प्यारे बाबा की तरफ से आप सबको टोली खिलाई जाएगी, और टोली खा करके सब भोजन करने के लिए जाएंगे। किसी से बैठना तो नहीं आपको, नहीं ना, ठीक है, क्योंकि नहीं, क्योंकि 8:30 क्लास पूरा करना है, इसलिए मैं जल्दी पूरा कर रही हूँ, क्योंकि 8:30 यहाँ पे डॉक्टर सचिन का क्लास है ना, क्लास, अच्छा, तो इसलिए टोली के लिए भी तो मैं आपको बता दूँ, बाबा से जब मिलने आते थे ना तो बाबा क्या करते थे, पहले कभी कभी बाबा आंगन में मिल लेते थे, फिर बाबा बच्चे कहते थे बाबा से मिलना है, दादी भी कभी बच्चों से मिलती थी तो बच्चे कहते नहीं हमको दादी से मिलना, मिलना मीन्स टोली खाना, टोली ना मिले तो कहेंगे मिले ही नहीं, टोली क्या है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। तो इसलिए आज आपके स्वागत में प्यारे बाबा और दादियों की तरफ से आपका मुख मीठा कराया जाएगा। अच्छा, ओम शांति, मैं इसलिए जल्दी पूरा कर रही हूँ कि इसके बाद नेक्स्ट क्लास है ना, ठीक, हाँ बोलो,
ओम शांति।